नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत को आतंकवाद से लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और देश इसका उपयोग करेगा। जंगली जानवरों के कारण फसल खराब होने और बाढ़ से धान की फसल का नुकसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विधायक दल की कल पटना में बैठक। आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में शीर्ष कमांडर मडवी हिडमा सहित 6 माओवादी मारे गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमेरिका साझेदारी मजबूत और स्थिर, रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में इसका विस्तार जारी। और टोक्यो में डेफलिंपिक में भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत को आतंकवाद से लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और देश इसका उपयोग करेगा। रूस के मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के सभी स्वरूपों को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए।
SCO की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों से निपटने के लिए की गई थी। बीते वर्षों में ये खतरे और भी गंभीर हो गए हैं। ये जरूरी है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए।
विदेश मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, महामारियों और संघर्षों से भरे वर्तमान समय में मानवीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक सभ्य राष्ट्र के रूप में भारत का दृढ़ विश्वास है कि लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान किसी भी ईमानदार संबंध का मूल तत्व है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया में विरासत संरक्षण के अपने व्यापक अनुभव को मध्य एशिया तक विस्तारित करने का इच्छुक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी मजबूत और स्थिर है, ये रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में विस्तारित हो रही है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने दोहराया कि दोनों देशों के बीच मित्रता, लोकतंत्र, विविधता और साझा विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है। श्री गोयल ने कहा कि वार्ता एक सतत प्रक्रिया है और भारत को अपने किसानों, मछुआरों, लघु उद्योगों और व्यवसायों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज टोक्यो में ओसाका गैस के प्रतिनिधि निदेशक और कार्यकारी उपाध्यक्ष केजी ताके मोरी से मुलाकात की। श्री पुरी ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने ओसाका गैस और भारतीय ऊर्जा कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ओसाका गैस की भारत के शहरी गैस वितरण क्षेत्र में पहले से ही उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ये 19 भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यरत है जो कुल मिलाकर जापान के लगभग 90% क्षेत्र के बराबर क्षेत्र को कवर करते हैं। जंगली जानवरों के कारण फसल खराब होने और बाढ़ से धान की फसल का नुकसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हो गया है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि जंगली जानवरों के हमले से होने वाले फसल नुकसान को अब स्थानीयकृत जोखिम प्रणाली के अंतर्गत 5वें अतिरिक्त कवर के रूप में मान्यता दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना में बाढ़ से धान की फसल के नुकसान को स्थानीयकृत आपदा के अंतर्गत पुनः शामिल किया गया है।
यह निर्णय कई राज्यों के लंबे समय से किए जा रहे मांगों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य किसानों को अचानक, स्थानीय और गंभीर फसल क्षति से सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी रूपरेखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है। इसके शामिल होने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड जैसे उच्च मानव वन्य जीव संघर्ष वाले राज्यों के साथ साथ हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को काफी लाभ होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत धान जल भराव को स्थानीय आपदा के रूप में फिर से शुरू करने से तटीय और बाढ़ संभावित राज्यों के किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा। जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान और धान जल भराव दोनों को शामिल किए जाने से यह योजना अधिक समावेशी बन गया है, जो भारत की फसल बीमा प्रणाली को और अधिक मजबूत और लचीला बनाने में सहायक सिद्ध होगा। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए विधायक दल की बैठक कल पटना में होगी। इस बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का नेता चुने जाने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन से पहले कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल ही मौजूदा 17वीं बिहार विधानसभा भी भंग हो जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इधर 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना है। बड़ी संख्या में गणमान्य और आम लोग भी ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इस बीच नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए के प्रमुख घटक दलों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच निर्णायक बातचीत जारी है। भारतीय जनता पार्टी नेता और गृहमंत्री अमित शाह के कल पटना पहुंचने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चर्चा करने की संभावना है। भाजपा संसदीय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में शीर्ष कमांडर मडवी हिडमा सहित 6 माओवादी मारे गए हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिदेशक पी सुंदरराज ने हिडमा की मौत को उग्रवाद विरोधी अभियानों में एक बड़ी सफलता बताया।
छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर इलाका में अल्लूरी सीताराम डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश पुलिस और माओवादी के बीच में हुई मुठभेड़ में 6 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उसमें एक बड़ी नाम है सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में पीएलजी बटल नंबर 1 का कमांडर भी रहा। उनके साथ उनकी वाइफ राजा का डेड बॉडी भी रिकवर की गई थी। और इस प्रकार सीपी माओवादी संगठन का जो एक रिम की हड्डी के रूप में और एक आतंक का चेहरा रहा माडवी हिडमा का डेड बॉडी रिकवर करने न सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में जो नक्सलवादी अभियान के लिए एक निर्णायक बढ़त रूप उसको हमको देख सकता है।
घटना से गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आंध्र प्रदेश में हाल ही में माओवादियों की गतिविधियां बढ़ने के कारण निगरानी बढ़ाई गई थी और त्वरित कार्रवाई की गई। मुठभेड़ के बाद कृष्णा, एनटीआर, काकीनाडा और एल्लूरा जिलों में 31 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने का आग्रह किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अल फलाह समूह से जुड़े 25 से अधिक परिसरों की तलाशी ली। ये तलाशी अभियान वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल, आवास संस्थाओं और धन शोधन की चल रही जांच का हिस्सा है। अल फलाह ट्रस्ट और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की जांच की जा रही है। इस महीने की 10 तारीख को दिल्ली के लाल किला के पास विस्फोट के सिलसिले में कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज के समय में जल चक्र को प्रभावित कर रहा है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 और प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने कहा कि देश में सीमित जल संसाधनों को देखते हुए जल का उचित उपयोग आवश्यक है।
भूजल के स्तर को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 34 लाख से अधिक, आज तो 35 लाख बताया गया है, अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की प्रणालियों को अपनाकर सभी इंडस्ट्रीज तथा अन्य स्टेक होल्डर्स जन संसाधन का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोदाम कार्यों के आधुनिकीकरण, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल पहलों की शुरुआत की। श्री जोशी ने कहा कि इस तरह की पहल सरकार के लॉजिस्टिक लागत को कम करने और टर्नओवर समय को न्यूनतम करने के मिशन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय, सब्सिडी वाला खाद्यान्न सबसे गरीब परिवारों तक अधिक सटीकता, तेजी और सम्मान के साथ पहुंचना सुनिश्चित करेगा।
अभी हमने आशा करके एक पोर्टल लॉन्च किया है। राशन जिसको मिला है उसका फीडबैक जब हमको मिलता है, वो फीडबैक के अनुसार जब हम एक्ट नहीं करते हैं तो टेक्नोलॉजी उपयोग नहीं होता है। सो टेक्नोलॉजी ड्रिवन विकसित भारत, ये प्रधानमंत्री जी का सोच है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध जन स्वास्थ्य से जुड़ी एक प्रमुख चिंता है। इसका समाधान सामूहिक कार्रवाई से ही संभव है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध विशेष रूप से शल्य चिकित्सा, कैंसर उपचार और अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल में गंभीर जोखिम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में विशेष हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी तथा बिक्री का उद्घाटन किया। श्री सिंह ने कहा कि दस्तकारी उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ रही है और ये मेला देश के कारीगरों के लिए सार्थक आर्थिक अवसर लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगामी बजट के सिलसिले में आज स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। इससे पहले दिन में श्रीमती सीतारामन ने पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ परामर्श किया। वित्त मंत्रालय विशेषज्ञों, उद्योग जगत के शीर्ष लोगों, अर्थशास्त्रियों और राज्य के अधिकारियों के साथ प्रतिवर्ष कई बजट पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित करता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
सेंसेक्स 0.33% की मंदी से 278 अंक गिरकर 84,673 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.4% के नुकसान से 103 अंक कम होकर 25,910 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का ही रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.7% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.8% से अधिक गिरावट के साथ बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मजबूत हुआ और 88.61 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल आंध्र प्रदेश, केरल, माहे और लक्षद्वीप में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। बृहस्पतिवार तक मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने की भी संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज रात 8 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 दर्ज किया गया। टोक्यो में बधिर ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीत लिया है। धनुष श्रीकांत और माहित संधू की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की जियोन डेन और किम वूरिम की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर मोहम्मद मुर्तजा वानिया और कोमल मिलिंद वाघमारे ने कांस्य पदक जीता। सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर में उन्होंने चांग कोची और पो ली वेई को हराया। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी कल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला कहानी के पीछे का व्यक्ति में हम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली नांग एक थानी मोंग लोंग के साथ एक बातचीत प्रसारित करेंगे। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालय पचिन में मात्र 2 वर्षों में 10वीं कक्षा के परिणामों को 30% से बढ़ाकर 100% तक पहुंचाकर एक चमत्कार कर दिखाया है। पॉडकास्ट सुनने के लिए कल सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड सुने। इसका प्रसारण कल शाम 5:30 बजे भी होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत को आतंकवाद से लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और देश इसका उपयोग करेगा। जंगली जानवरों के कारण फसल खराब होने और बाढ़ से धान की फसल का नुकसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विधायक दल की कल पटना में बैठक। आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में शीर्ष कमांडर मडवी हिडमा सहित 6 माओवादी मारे गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमरीका साझेदारी मजबूत और स्थिर, रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में इसका विस्तार जारी। और टोक्यो में डेफ ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।